एक अलग आवाज में एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रांसीसी लेखक की जिन्होंने कहा जाता है नॉवल लिखने का तरीका ही बदल दिया, गुस्ताव फ्लोबे, 1821 से 1880। नाम तो सुना ही होगा सबने, पर शायद उनकी जो गहराई है, उनका जो असर है, उस पर आज थोड़ी बात करते हैं।
बिल्कुल सही कहा, फ्लोबेर का नाम आते ही हाँ, यथार्थवाद या रियलिज्म और जाहिर है मादाम बोवारी, ये चीज़ें दिमाग में आती हैं। पर वो इससे कहीं ज़्यादा थे, सिर्फ लेखक नहीं बल्कि जैसे शब्दों के कारीगर थे वो। एक साधक जिसने आम सी दिखने वाली जिंदगी से असाधारण कला निकाल ली, और उनकी सबसे बड़ी शायद सबसे क्रांतिकारी सोच थी लेखक की अवैयक्तिकता, मतलब कहानी से लेखक गायब।
हाँ, और मादाम बोवारी, कमाल है कि आज भी, मतलब 150 साल बाद भी, वो किताब उतनी ही बहस छेड़ती है, उतनी ही प्रासंगिक लगती है। तो चलिए आज फ्लोबेर की दुनिया में उतरते हैं, उनका जीवन, उनका वो तूफानी दौर और उनकी वो रचनाएं जिन्होंने साहित्य पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। देखते हैं क्यों जेम्स जॉयस ने कहा था फ्लोबेर हम सबके गुरु हैं।
फ्लोबेर का जमाना 19वीं सदी का फ्रांस, क्या उथल पुथल का दौर था वो। क्रांति, फिर साम्राज्य, फिर वापस गणतंत्र, मतलब समाज जैसे लगातार बदल रहा था।
बिल्कुल, वो नेपोलियन के बाद वाला फ्रांस था ना, तो एक तरफ पुरानी राजशाही लौटने की कोशिश में थी, दूसरी तरफ वो औद्योगिक क्रांति और एक नया मध्य वर्ग, बुर्जवा वर्ग जिसे कहते हैं, वो उभर रहा था। साहित्य में उस वक्त रोमांटिसिज्म का जोर था, विक्टर ह्यूगो जैसे लेखक, भव्य भावनाएं, बड़े बड़े हीरो, ड्रामा। लेकिन फ्लोबेर जैसे कुछ लोग थे जो इस सबसे कह सकते ऊब चुके थे।
तो उन्होंने फिर यथार्थ की तरफ देखा। हाँ, पर उनका यथार्थवाद सिर्फ घटनाओं को लिख देना नहीं था, उन्होंने बहुत बारीकी से देखा उस नए उभरते हुए समाज को, जो मध्यम वर्ग था ना, उसकी ऊपरी चमक दमक लेकिन अंदर का खोखलापन, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें पर असलियत कुछ और। तो फ्लोबेर ने बिना किसी झिझक के बिल्कुल निर्ममता से उसे दिखाया। उनकी नज़र जैसे एक सर्जन की थी जो समाज को काट कर देख रहा हो, और ये शायद उनके बचपन के माहौल की वजह से भी था।
अच्छा, उनके बचपन का माहौल, मैंने सुना है उनके पिता डॉक्टर थे।
हाँ, बल्कि चीफ सर्जन थे रुआं शहर के मुख्य अस्पताल होटल ड्यू में, और उनका परिवार अस्पताल के कैंपस में ही रहता था। अब सोचिए, एक बच्चा जो अस्पताल के माहौल में, जहाँ बीमारी है, दर्द है, मौत है, उसके बीच बड़ा हो रहा है, तो जीवन की जो कठोर सच्चाइयाँ ना, वो उन्होंने बहुत पास से देखी कम उम्र में। मुझे लगता है इसने ज़रूर उनके लिखने के अंदाज को, वो जो एक तटस्थता है, एक विश्लेषण वाली शैली है, उसको गढ़ा होगा, शायद जीवन को लेके एक तरह की निराशा भी।
फिर उनको कानून पढ़ने पेरिस भेजा गया, लेकिन उसमें मन नहीं लगा उनका बिल्कुल। फिर 1844 में कुछ कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, उनको मिर्गी का, एपिलेप्सी का पहला दौरा पड़ा। ये उनके लिए एक बड़ा सदमा तो था, लेकिन इसने एक तरह से उनको रास्ता भी दे दिया। जो कानून की उबाऊ पढ़ाई थी, उससे निकलने का बहाना मिल गया, और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो पूरी तरह से सिर्फ लिखेंगे। हालांकि इस बीमारी ने उनको थोड़ा और अलग थलग कर दिया समाज से। वो फिर अपना ज्यादातर वक्त क्रोइजेट में अपने घर पे ही बिताने लगे, अपनी माँ और भतीजी के साथ, एक तरह के एकांतवास में।
और वहीं उसी एकांत में फिर उन्होंने लिखना शुरू किया, मतलब पूरी तरह से।
लिखना तो वो खैर पहले भी थोड़ा बहुत करते थे,
हाँ।
पर अब वो ही उनकी जिंदगी बन गया। इसी दौरान अपने दोस्त मैक्सिम ड्यूकैम के साथ उन्होंने मिडिल ईस्ट की एक लंबी यात्रा भी की, 1849 से 51 तक। मिस्र गए, फिलिस्तीन, तुर्की, वहां के रंग, वहां का जो एग्जॉटिक माहौल था, उसका भी गहरा असर पड़ा उन पर। वो बाद में सलम्बो जैसी किताबों में दिखता भी है।
और फिर आया मादाम बोवारी का दौर। कहते हैं 5 साल लगे उसे लिखने में। 5 साल?
हाँ, पूरे 5 साल, 1851 से 1856 तक। और फिर जब 1857 में किताब छपी, तब तो जैसे भूचाल आ गया। किताब पर मुकदमा चला दिया गया, अश्लीलता फैलाने का, नैतिकता को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगा। अगर हार जाते तो शायद जेल भी हो जाती, पर वो जीत गए, बरी हो गए, और बस रातों रात पूरे फ्रांस में मशहूर हो गए। हालांकि ये शोहरत उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई, पर इसने उनको साहित्य की दुनिया में एक पहचान जरूर दे दी।
तो इस मुकदमे और शोहरत के बाद जिंदगी कैसे बदली उनकी?
बाहर से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं, वही क्रोइसेट का एकांत और लिखने की वो जबरदस्त मेहनत। हाँ, उनका कवयित्री लुईस कोलेट के साथ एक लंबा और काफ़ी तूफ़ानी रिश्ता रहा, लेकिन वो भी ज़्यादातर चिट्ठियों में ही चला। वो चिट्ठियाँ आज बहुत ज़रूरी हैं उनके विचारों को, उनकी कला को समझने के लिए। पर धीरे धीरे निजी जीवन में अकेलापन जैसे बढ़ता गया, दोस्त कम होते गए, और फिर ज़िंदगी के आखिरी सालों में अपनी भतीजी के परिवार की आर्थिक मदद करने के चक्कर में वो खुद काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे। पैसे की तंगी हो गई थी।
चलिए अब उनके सबसे बड़े साहित्यिक योगदान पर आते हैं। कैसे बदला उन्होंने उपन्यास को? ये जो लेख की अव्यक्तिकता की बात है, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है?
हाँ, ये उनका सबसे अहम और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार था। उनका कहना था कि लेखक को अपनी रचना में ऐसा होना चाहिए जैसे ईश्वर है कायनात में, हर जगह मौजूद पर कहीं दिखाई न दे। मतलब ये कि लेखक कहानी कहते हुए बीच में आकर अपनी राय ना दे, वो ये ना बताए कि क्या सही है क्या गलत, पात्रों या घटनाओं पर अपना फैसला ना सुनाए, कहानी को पात्रों को खुद बोलने दे, पढ़ने वाला खुद समझे, खुद नतीजा निकाले। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत नई बात थी। तब तो लेखक अक्सर सीधे पाठक से बात करते थे, अपनी टिप्पणी देते थे।
पर ये मुमकिन कैसे है? मतलब लेखक अगर लिख रहा है तो उसका नजरिया तो उसमें झलकेगा ही ना।
यहीं पर उनकी तकनीक काम आती है, जिसे कहते हैं मुक्त अप्रत्यक्ष कथन, या फ्रेंच में स्टील इनडायरेक्ट लिब्रे। थोड़ा तकनीकी है, पर आसान भाषा में कहें तो ये लिखने का एक ऐसा तरीका है जिससे पढ़ने वाला सीधे कैरेक्टर के विचारों और भावनाओं को महसूस करता है, बिना ये कहे कि उसने सोचा या उसने महसूस किया। वाक्य होता तो लेखक का है, पर उसमें कैरेक्टर की भाषा, उसका लहजा, उसकी सोच झलकती है, तो पढ़ने वाले को लगता है जैसे वो सीधे पात्र के मन में उतर गया है, जबकि लेखक खुद एक दूरी बनाए रखता है। मादाम बोवारी इसका बेहतरीन नमूना है। हम एमा बोवारी के मन की हर उथल पुथल को जैसे सीधे महसूस करते हैं।
और उनकी भाषा को लेकर जो दीवानगी थी, ले मो जूस्ट यानी सही शब्द की तलाश, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कोई एक वाक्य को परफेक्ट बनाने के लिए हफ्तों कैसे बिता सकता है। क्या था ये जुनून?
और जुनून तो था ये, पर ये उनके आर्ट के फलसफे का हिस्सा था। वो मानते थे कि हर चीज, हर एहसास, हर विचार के लिए सिर्फ एक और एक ही सबसे सही शब्द या वाक्य होता है। उसे ढूंढ निकालना ही लेखक का काम है। वो गद्य को, मतलब प्रोज को, पोएट्री जैसी सटीकता, वैसी ही लय और वैसा ही संगीत देना चाहते थे। इसीलिए तो वो अपने लिखे वाक्यों को अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ते थे। मजाक में उस कमरे को ग्योलवार कहते थे, मतलब चिल्लाने की जगह। हर शब्द की आवाज, हर वाक्य का वजन, सब परखते थे। इसे सुंदर लिखने के लिए नहीं था, उनका मानना था कि सिर्फ सही शब्द ही असलियत को ठीक ठीक दिखा सकता है, बिना लेखक की मिलावट के। ये उनकी अव्यक्तिकता वाली बात से जुड़ा था।
और इसी मेहनत का नतीजा था कि उन्होंने बिल्कुल आम जिंदगी को भी एक महाकाव्य जैसी ऊंचाई दे दी।
हाँ बिल्कुल। पहले क्या होता था, गंभीर साहित्य मतलब या तो राजा रानी की कहानी या फिर देवी देवताओं की। फ्लॉबेर ने दिखाया कि एक छोटे शहर के डॉक्टर की बीवी या एक मामूली क्लर्क, उनकी बोरियत भरी साधारण सी जिंदगी में भी उतनी ही गहराई, उतना ही ड्रामा, उतनी ही ट्रेजेडी हो सकती है जितनी किसी बड़े ऐतिहासिक हीरो की जिंदगी में। उन्होंने रोजमर्रा की इस सच्चाई को पूरी मनोवैज्ञानिक जटिलता के साथ पेश किया।
मादाम बोवारी तो खैर क्लासिक है ही। एमा बोवारी, जो अपने उबाऊ शादीशुदा जिंदगी और अपने रोमांटिक ख्यारों के बीच फंसी हुई है, फिर प्रेम संबंधों में पड़ती है, कर्ज में डूबती है और आखिर में आत्महत्या कर लेती है। इसके अलावा उनकी और कौन सी रचनाएं हैं जो बहुत अहम मानी जाती हैं?
हाँ, मादाम बोवारी 1857 तो यथार्थवादी उपन्यास का जैसे शिखर है। फिर है सलाम्बो, जो एकदम अलग मिजाज की किताब है। ये प्राचीन कार्थेज में भाड़े के सैनिकों के विद्रोह की कहानी है, बहुत भव्य, हिंसक और एक्जॉटिक। इसके लिए उन्होंने गजब की रिसर्च की थी, सालों लगाए, पुराना इतिहास पढ़ा, ट्यूनीशिया तक गए। ये उनकी कल्पना और उनके शोध का जबरदस्त नमूना है।
और वो सेंटिमेंटल एडुकेशन, मतलब सेंटिमेंटल एडुकेशन, सुना है कई लोग इसे मादाम बोवारी से भी बेहतर मानते हैं।
हाँ, लेदिकासु सांतिमेंताल 1869, उसे कई क्रिटिक्स उनका सबसे बड़ा काम मानते हैं, उनका मैग्नम ओपस। ये फ्रेडरिक मोरो नाम के एक नौजवान की कहानी है। उसके प्यार, उसके सपने, उसके राजनीतिक आदर्श, सब 1848 की क्रांति और उसके बाद के माहौल में कैसे टूटते बिखरते हैं, ये उसकी कहानी है। पर ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के मोहमंग की, उनकी निराशा, उनके भटकाव की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की निजी जिंदगी और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं।
उनकी तीन कहानियां भी काफी मशहूर हैं, 1877 वाली
जी,
थ्रोकॉन्स। उसमें तीन बिल्कुल अलग अलग रंग की कहानियां हैं। एक है एक भोला हृदय, अंकर संपल, एक साधारण सी नौकरानी फेलिसिते की कहानी। इतनी मार्मिक, इतनी करुणामय है वो, शायद फ्लोबेर की सबसे हमदर्द रचना। दूसरी कहानी संत जूलियन हॉस्पिटलर की कथा, मध्य युग की एक संत कथा को फिर से लिखा है उन्होंने। और तीसरी हेरोदियास, बाइबल की कहानी है जिसे नए मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा गया है। और हाँ, उनका वो आखिरी अधूरा उपन्यास बुवार दे पेकुशे। दो क्लर्क हैं जो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान हासिल कर लेंगे और हर चीज़ में हाथ डालते हैं, और हर जगह उन्हें मूर्खता और विरोधाभासी मिलता है। इंसानी मूर्खता पर एक कमाल का सटायर है वो।
तो क्या फ्लॉबेर को उनके जीते जी वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? आपने बताया कि मुकदमे से शोहरत मिली, पर क्या साहित्यिक दुनिया ने उन्हें सराहा? आधिकारिक पहचान मिली, हाँ, पर थोड़ी सीमित ही कहूँगी। फ्रांस का जो सबसे बड़ा सम्मान है, लीजन ऑफ ऑनर, वो उन्हें मिला 1866 में। उन्होंने ले तो लिया, पर उन्हें इन सरकारी तमगों की कोई खास परवाह नहीं थी। जो अकादमी फ्रांसिस जैसी बड़ी संस्थाएं थी, उनसे वो दूर ही रहे। विवाद उनके साथ ज़्यादा जुड़े, असली कदर तो उनकी मौत के बाद हुई, जब हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, मार्सल प्रूस्ट जैसे मॉडर्निस्ट लेखक आए ना, उन्होंने फ्लॉबेर को अपना गुरु माना। तब दुनिया को समझ आया कि इस आदमी ने नॉवेल की कला को कितना बदल दिया था।
तो आज इतने सालों बाद फ्लॉबेर हमारे लिए क्यों जरूरी है? आज उनकी क्या प्रासंगिकता है?
कई वजह हैं। एक तो उनकी जो लिखने की तकनीकें हैं, खासतौर पर वो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स वाले, वो आज भी दुनिया भर के लेखकों को सिखाती हैं, प्रभावित करती हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो आज भी जिंदा हैं। ये उपभोक्तावाद की आलोचना, रोमांटिक सपनों और असलियत के बीच का जो तनाव होता है, एक प्रामाणिक जीवन की तलाश, मध्यम वर्ग की नैतिकता का खोखलापन, ये सब चीजें तो आज की दुनिया में भी हमें साफ दिखती हैं।
और एमा बोवारी का किरदार, क्या वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है हमारे आसपास?
बिल्कुल जिंदा है। एमा बोवारी तो जैसे आज के इंसान की वो कभी ना पूरी होने वाली इच्छाओं का, उन अतृप्त ख्वाहिशों का प्रतीक बन गई है। खासकर ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, इसमें तो वो और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। जहां लोग अपनी असलियत से ज्यादा अपनी एक बनाई हुई इमेज में जीते हैं, जहां बाहरी चमकदमक के पीछे अक्सर एक गहरा खालीपन होता है, फ्लॉबेर हमें दिखाते हैं कि कैसे साहित्य, कैसे कला हमें अपनी जिंदगी को, अपनी इच्छाओं को, अपने समाज को ज्यादा गहराई से, ज्यादा ईमानदारी से देखने में मदद कर सकती है।
फ्लॉबेर के कुछ कोट्स भी बहुत मशहूर हुए, जैसे एक वो कहते हैं, मादाम बोवेरी से मुआ, मतलब मादाम बोवेरी मैं ही हूँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो अपनी अव्यक्तिकता पर इतना जोर देते थे।
हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर इसका मतलब गहरा है। ये शायद दिखाता है कि भले ही वो लेखक के तौर पर पीछे हटने की, तटस्थ रहने की कोशिश करते थे, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वो अपने किरदारों से कितना ज्यादा जुड़ते थे। शायद इसका मतलब ये है कि एमा की जो कमजोरियां थीं, उसके जो सपने थे, उसकी जो निराशा थी, वो सब कहीं ना कहीं फ्लॉबेर ने अपने अंदर भी महसूस की होंगी। सच्ची कला लिखने के लिए शायद ये जरूरी भी होता है।
और वो दूसरा वाला कथन, लेखक को अपनी रचना में ईश्वर की तरह होना चाहिए,
हर जगह मौजूद पर कहीं दिखाई न दे।
हाँ, ये उनके उसूल का निचोड़ है। लेखक दुनिया बनाता है, किरदार बनाता है, पर खुद सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे रहता है।
एक और कोट है जो मुझे बहुत छूता है, भाषा की सीमाओं के बारे में, कि इंसानी बोली एक फटे हुए बर्तन जैसी है। हाँ, वो मदाम बोवारी में ही है। कमाल का है वो। मानवीय वाणी एक फटे हुए बर्तन की तरह है, जिस पर हम भालुओं को नचाने के लिए भद्दी धुने बजाते हैं, जबकि हम ऐसा संगीत बनाना चाहते हैं जो सितारों को पिघला दे। कितनी खूबसूरती से कहा है उन्होंने कि भाषा कितनी नाकाफी है हमारी गहरी भावनाओं को, हमारे असल एहसास को पूरी तरह बयान करने के लिए। ये इंसानी मजबूरी है।
और जीने के तरीके पे भी उनका एक फॉर्मूला था, कुछ नियमित व्यवस्थित रहने की बात।
अपने जीवन में नियमित और व्यवस्थित रहो, ताकि तुम अपने काम में हिंसक और मौलिक हो सको। क्या बात है, ये बिल्कुल उनके जीने और लिखने के तरीके का सार है। उनका मानना था कि कला में अगर कुछ नया करना है, कुछ क्रांतिकारी, कुछ उथल पुथल मचाने वाला करना है, तो उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में एक तरह का अनुशासन, एक स्थिरता जरूरी है। एक शांत मुनज्जम जिंदगी ही उस तूफानी क्रिएटिव एनर्जी को संभाल सकती है।
तो फ्लॉबेर की इस पूरी बातचीत से गुजरते हुए एक बात तो साफ लगती है कि वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे थे, वो तो जैसे कला के लिए जी रहे थे।
एक एक शब्द को तराश रहे थे जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है।
बिल्कुल, वो एक तरह से साहित्य के शहीद थे, पूरी जिंदगी लगा दी उस सही शब्द, उस सही वाक्य की तलाश में। वो हमें याद दिलाते हैं कि बड़ा साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होता या टाइम पास नहीं होता, वो सच्चाई की एक लगातार चलने वाली खोज है। कभी कभी दर्दनाक भी होती है वो खोज। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से भाग रहा है, जहां हर चीज तुरंत चाहिए, जहां शब्दों का वजन जैसे कम होता जा रहा है, वहां फ्लोबेर का लेखन हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है।
सोचने पर कि हम भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कैसे देखते हैं, और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी असलियत क्या है।
हाँ, और शायद सबसे बड़ा सवाल जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं वो ये है, क्या हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एमा बुआरी की तरह ही असलियत की बोरियत से भागकर अपने ही बनाए सपनों और भ्रमों की दुनिया में नहीं जी रहे हैं? ये सवाल आज भी उतना ही तीखा है, उतना ही परेशान करने वाला है जितना 150 साल पहले था।
एक अलग आवाज में फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।